ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کے خلاف توہین عدالت کی فرد جرم. اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. یہ ناظرین، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک نیا موڑ اس وقت ہے جب 13 فروری یعنی کل وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی بذات خود سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور سپریم کورٹ نے انہیں طلب کیا تھا ان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے. جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ فرد جرم اگر عائد ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اسمبلی کی رکنیت بھی ختم ہو جائے گی اور وزیراعظم کے مستعفی ہونے کی ضرورت بھی نہیں رہ جائے گی، وہ خود بخود مستعفی ہو جائیں گے. لیکن جب وہ کمرے عدالت میں پہنچے اور ان سے عدالت یا یوں کہا جائے کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے سوال کیا کہ کیا آپ اپنے جرم کا اعتراف اور اس کے صحت ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، تو انہوں نے صحت جرم کا انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس جرم کو نہیں مانتا. ظاہر ہے کہ عدالت اور وزیر اعظم کے درمیان سوال و جواب کا تبادلہ ہوا، لیکن جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کم از کم عوام میں یہ بات کہنے کے لیے اپنے کو حقدار اور بجا ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ عدلیہ اور اداروں کا احترام کرتے ہیں. عدالت نے انہیں طلب کیا، وہ عدالت میں بذات خود حاضر ہوئے. اب جبکہ انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ہم اس جرم کو تسلیم کرتے ہیں یا ہم نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو عدالت نے مزید کارروائی کے لیے 22 فروری کی تاریخ دی ہے. اس کے بعد خیال یہ کیا جاتا ہے کہ 28 کے بعد باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوگا اور پھر عدالت کا کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو بات کی صورتحال ہی بتائے گی. لیکن جو بات اپنی جگہ پر سامنے آئی وہ یہ کہ عدالت میں جانے سے پہلے وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی نے اپنے موقف کو ایک بار پھر دہرایا کہ صدر پاکستان کو استثناء حاصل ہے اور وہ سوئس عدالتوں کو خط نہیں لکھیں گے. اور ظاہر ہے کہ یہی وہ سب سے اہم مسئلہ ہے جو اس وقت اگر کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک طرح سے تنازع کا باعث ہے، اور جس کی وجہ سے وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کو 2 بار سپریم کورٹ میں خود چل کر جانا پڑا. اور خود حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہے کہ جب وزیراعظم ملک کے سربراہ مملکت پر فرد جرم عائد کی گئی. اس سے پہلے اظہار وجوہ کا نوٹس تو جاری کیا جا چکا ہے نواز شریف اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، لیکن فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ یا اعلان پہلی بار ہوا ہے. اس درمیان اس اقدام پر وزیراعظم پاکستان کے جہاں بہت سارے نظریات اور بہت سارے رد عمل سامنے آ رہے ہیں، وہیں حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں نے آج جب کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا تو وزیراعظم کے اس اقدام کو سراہا اور ایک بار پھر ان کی وزارت عظمیٰ پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے عدالت کی طرف سے وزیراعظم کو کورٹ میں طلب کیے جانے اور پھر وزیراعظم کے کورٹ میں جانے اور پھر کورٹ میں یعنی سپریم کورٹ کی طرف سے وزیراعظم پر فرد جرم عائد کیے جانے کے اقدام کو پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن سے تعبیر کیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ شہید بے نظیر بھٹو کی قبر کا ٹرائل نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دے گی کہ ان کی قبر کا ٹرائل ہو. دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں جن میں نواز شریف صاحب کی جماعت اور خود نواز شریف صاحب اور تحریک انصاف پاکستان کے سربراہ عمران خان، ان لوگوں کا بدستور اس بات پر اصرار ہے کہ حکومت کو چاہیے، وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ خط لکھیں. اور نواز شریف صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس آنا چاہیے، پھر استثناء کی بات ہوگی، جس کے جواب میں جو ان کے مخالفین ہیں اور جو حکومت کے حامی ہیں उनका कहना यह है कि इस्तेसना अगर हासिल नहीं है तो उस वक्त सोचना चाहिए था, और ये कहना कि पहले पैसा वापस लिया जाए फिर इस्तेसना की बात हो। और तो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो मौजूदा सदर इस वक्त पाकिस्तान की, इनको तमाम सियासी जमातों ने मुंतखबा तौर पर मुतफ़ा तौर पर सदर मुंतखब किया था, या यूं कहा जाए कि अक्सरियत आरा के साथ मुंतखब किया गया था। और जिस वक्त उनको मुंतखब किया गया था तो उस वक्त यह मसला क्यों नहीं उठाया गया। और भी हुकूमती हलकों का यह भी कहना है कि अब जबकि 4 साल गुजर चुके हैं तो 1 साल में क्या मसला रह जाता है। और ये बात गालिबन जो हुकूमती वकील हैं उन्होंने भी इसकी तरफ इशारा किया। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं मुमताज सियासतदान और पीपल्स पार्टी के लीडर जनाब अबरार अली रिजवी साहब। रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम।
नहीं मैं मौजूद हूँ।
अबरार अली रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी रिजवी साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बजाय ऐसा लगता है कि हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद तो हैं, जाहिर तस्वीर उनके सामने है, लेकिन आवाज पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा सेनेटर सफदर अब्बासी साहब। सफदर अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी।
सफदर अब्बासी साहब, अब गुज़िश्ता रोज यानी 13 फरवरी को जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी पर सुप्रीम कोर्ट ने फर्दे जुर्म आयद कर दी है, अगरचे उन्होंने सेहते जुर्म से इनकार किया है, तो इस सूरत हाल में जब कश्मकश की सूरत हाल है हुकूमत और अदलिया के दरमियान, तो मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसका अगरचे एक ही साल रह गया है लेकिन फिर भी मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप?
लेकिन यकीन ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जी, जिसके अंदर मुल्क के वज़ीर आज़म पे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे पाबंदी ना करने के इल्जाम में फर्ज़ जुर्म आयद की गई है। और यकीनन ये एक बहुत ही ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक कैफियत जो है ना वो काफी कंफ्यूजिंग किस्म की कैफियत है, और लोग जो है ना इस बात से कोई इतनी ज्यादा खुश नहीं है। यकीनन जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जजमेंट आई, उस पर जो है ना वो अमल नहीं हो सका, और उस अमल की अमल न होने के नतीजे में इस वक्त की सूरत हाल है कि मुल्क का वजीर आजम जो है ना वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है और कन्विक्ट भी हो सकता है, और फिर आने वाले दिनों में शायद उनको अपनी सीट भी छोड़नी पड़े। अब ये जो अमल है ये क्यों हुआ, किस तरह जो है ना हम यहाँ पे पहुंचे, ये यकीन ऐसा सवाल है जो इस वक्त जो है ना पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है डिस्कस हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर सूरत हाल क्योंकि बरकरार रहती है और जो है ना जिस तरीके से हुकूमत वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे जिसके जरिए उनको मुख्तलिफ ममालिक में खतूत लिखने थे अगर कायम रहती है और जो है ना उसमें अमल नहीं करती, तो मैं समझता हूँ कि शायद हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये जो एक लीगल प्योरली लीगल इशू है उसके बहुत काफी सारे सियासी मुजमरात भी जो है ना हमें देखने को मिलेंगे।
जी बहुत शुक्रिया, मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज लीडर जनाब अबरार अली रिजवी साहब। रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम।
आपकी जी आ रही, बिल्कुल आ रही है जी।
रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम। अबरार अली रिजवी साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? बहरहाल हमारे साथी कोशिश करेंगे कि ये जो फनी मुश्किल है ये बरतरफ हो जाए। सफदर अब्बासी साहब, हुकूमत के इस मौकिफ के बारे में आप क्या कहेंगे? खुद वज़ीर आज़म ने अदालत में पेश होने से कबल एक बार फिर आपने इस मौकिफ को दोहराया था कि सदर को इस्तेसना हासिल है और हम खत नहीं लिखेंगे। जब इस्तेसना हासिल है तो अदालत का इसरार क्यों है?
देखिए जी, मैं समझता हूँ कि उसमें यकीनन जो है ना जो आईन का आर्टिकल 248(2) है उसके अंदर सदर साहब को जो है ये इस्तेसना दिया गया है, लेकिन अब बात यह कि क्या मौजूदा केस में ये इस्तेसना लागू होता है नहीं लागू होता, उसके लिए मेरी नजर में जरूरत इस बात की थी कि ये प्ली जो है ना जो कि हम मुख्तलिफ अखबारात में देखते हैं, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे जो ना बोली जाती है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, मेरी अपनी जाती राय इसके अंदर यह है कि जब तक इस इशू को कोर्ट के सामने नहीं लाया जाता और कोर्ट के सामने ये बात नहीं की जाती इस्तिस्ना वाली, तब तक जो है ना ये जो 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 डेडलॉक है ये डेडलॉक जो है वो बरकरार रहेगा। और शायद आने वाले दिनों में जिस तरह मैंने कहा कि फैसले पे अमल न करने की वजह से या तो ये कि ये जो प्ली है ये जो है ना वजीर आजम साहब ले लें और जो है ना कोर्ट के सामने ये कहें कि जी मैं क्योंकि जो है ना मेरे पे ये इस्तिस्ना की पाबंदी है इस वजह से मैं ये अमल करने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन अब तक वजीर आजम साहब की तरफ से ये बातें मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के लीडरान की तरफ से तो जरूर आती हैं लेकिन उनकी तरफ से ये बात जो है ना वो सामने नहीं आई और कोर्ट के सामने नहीं आई, जिसकी वजह से ये मैं समझता हूँ कि डेडलॉक पैदा होता चला जा रहा है। और अगर ये आइंदा भी जो है ना इस चीज को एजिटेट न किया गया तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में शायद वजीर आजम साहब के लिए अपना सर्वाइवल भी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। एक बार फिर हम कोशिश करते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो चलने की जहाँ रिजवी साहब मौजूद हैं। रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम।
सलाम
जी रिजवी साहब, जैसा कि सेनेटर सदर अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि अगर कोर्ट के सामने वजाहत न की गई तो वजीर आजम पाकिस्तान का हुकूमत में रहना मुश्किल हो जाएगा, और जबकि हुकूमत का कहना है कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है लिहाजा हम खत नहीं लिख सकते, तो आखिर सूरत हाल किस करवट जाएगी?
बरादर अजीज बात यह है कि दोनों जानिब कानून के माहिरीन मौजूद हैं। पाकिस्तान का आईन उन्हें इस्तिस्ना देता है सदर पाकिस्तान को, और वजीर आजम पाकिस्तान जो वो वजारत कानून की मशवरे के बाद अपने वकला के मशवरे के बाद और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वो समझते हैं कि सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल है। आइंदा तारीख पर इस पर गुफ्तगू होगी, आर्गूमेंट दिए जाएंगे, दलायल होंगे, इसके बाद अपील का मरहला है। इतना आसानी से मरहला ये नहीं गुजरता कि आप कह दें कि कल ये फैसला हो जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा, तरसों ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सियासत में बहुत सारे अमूर पर गौर करना पड़ता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समझती है कि एक फैसला हो चुका और एक सारे मामलात खत्म हो चुके स्विट्जरलैंड में, तो आज उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? पाकिस्तान में सिर्फ आसिफ अली जरदारी नहीं है, पाकिस्तान में बेशुमार हजरात NRO के तहत मुस्तफिद हुए हैं। किसी और के बारे में क्यों नहीं कहा गया कि इनके खिलाफ खत लिखा जाए या कोई मुकदमा खोला जाए? सिर्फ एक आसिफ अली जरदारी हैं जिनके लिए ये मुकदमा खोला जाएगा। नंबर दो बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम तरीन हिस्सा है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की वो हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ये समझते हैं कि उनके वजीर आजम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी पूरी जमा मर्जी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कायद की और पार्टी की तर्जमानी कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि इस और वो इस बात की भी इजाज़त नहीं देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद चेयर पर्सन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ उनकी शहादत के बाद कोई मुकदमा खोला जाए, और असूली तौर पर इखलाकी तौर पर ये इस बात की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि दुनिया भर में सब जगह ये तयशुदा फार्मूला है कि एक शहीद और ऐसी शख्सियत जो दुनिया भर में शहीद तस्लीम की गई हो, जिसे यूनाइटेड नेशन ने तस्लीम किया हो, जिसने यूनाइटेड नेशन में इजहार अफसोस किया हो, दुनिया भर में उसके लिए इजहार अफसोस के कंडोलेंस के करारदादें मंजूर हुई हों, मैसेज आए हों, उस खातून के खिलाफ। और आसिफ अली जरदारी की बात नहीं है ये, इसके पीछे जो मकासद हैं लोगों ने जिन्होंने दरख्वास्तें गुजारी हुई हैं उनके मकासद कुछ और हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को डैमेज करें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील चौधरी एतज़ाज़ हसन और उनके साथी माहिरीन कानून वो इस केस को बखूबी हैंडल कर पाएंगे और अपने मौकफ का इआदा करेंगे, बल्कि अदालत को कायल करने पर भी कामयाब होंगे।
जी रिजी साहब, अपोजिशन जमात के कायद जी अपोजिशन जमात के कायद में नवाज शरीफ ने कहा है कि इस अदालत के इस फैसले के बाद भी कि लूटा हुआ पैसा वापस आना चाहिए, इस्तिस्ना की बात में होगी।
मैं ये मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो कहते हैं लाहौर में रेफरेंसेज है वो क्यों नहीं खोले जाते? चार रेफरेंसेज जो मौजूद हैं जो किसी न किसी बहाने से टाले जाते हैं वो क्यों नहीं खोले जाते? उस पर तो कोई इस्तिस्ना नहीं है, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है, वो क्यों नहीं खोले जाते और क्यों रोका जाता उन्हें? क्या ये साजिश है कि उनके चारों के चारों पाकिस्तान के कई टेलीविजन ने ان چاروں مقدمات کی تفصیلات عوام تک پہنچائیں گے، لیکن آج تک نہیں کھلتے۔ پھر اس کے بعد ایئر مارشل اصغر خان کی اپلیکیشن، آج تک مہران سکینڈل، مہران بینک سکینڈل جو آئی جی آئی بنانے پہ قائم ہوا، جس میں بڑی بڑی اہم شخصیات ہیں، وہ 10 سال 12 سال پینڈنگ پڑا رہا۔ کیوں؟ 3 سال 4 سال سے ہم آئے ہوئے، موجودہ چیف جسٹس بھی موجود ہیں، ہم نے اسی آزاد عدلیہ کے لیے جنگ لڑی۔ ہمارا کہتے ہیں لطیف کھوسا کا سر سے پہلا سر، گورنر پنجاب کا سر پہلا کھلا، اس کے بعد جناب ہمارا ایک ساتھی زمرد خان زخمی ہوا، اس میں اور بہت سارے ساتھی زخمی ہوئے۔ ہم نے تو ہم تو عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ہم آئین، قانون اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی جدوجہد سے ہماری تاریخ عبارت ہے، اور اس میں کہیں کوئی شبہ نہیں آتا۔ مجھے 1967 سے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں، اور میں نے کبھی کسی قائد کو کبھی کسی عدالت کی توہین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرا قائد ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی پیش ہوئے، آج ہمارے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی دوسری بار پیش ہوئے ہیں، اور عدالت لگنے سے پہلے عدالت میں پہنچے ہیں۔ ہم کیسے توہین کر سکتے ہیں؟ لیکن جو آئینی سسنا ہے وہ ہمارا حق ہے، ہم اس کے لیے اس کے موقف اپنا پیش کریں گے، اس کے لیے دلائل بھی دیں گے، اس پر پوری کامیابی کے ساتھ مقدمہ لڑیں گے۔
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ سینیٹر صدر عباسی صاحب، پاکستان میں بعض حلقوں کا یا متعدد حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے یہ اقدام کر کے یعنی دو بار سپریم کورٹ میں پیش ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت اور اپنی مقبولیت میں اضافہ کیا ہے، اور اس طرح سے دیگر جماعتوں کو یہ ایک مثال پیش کی ہے کہ عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے، اور عدلیہ کا کس طرح احترام کرنا چاہیے، اور اس کے بلانے پر فوراً وزیر اعظم ہی کیوں نہ اسے جانا چاہیے۔ تو آپ بھی اس سے متفق ہیں کہ اس سے آگے چل کر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت یا اس کے ووٹوں میں یا اضافہ ہو سکتا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے جی، اس میں تو یقیناً جو ہے نا وہ بہت اچھا اقدام ہے وزیر اعظم صاحب کا کہ جی جب بھی ان کو کورٹ نے بلایا، دوسری دفعہ بلایا اور وہ بالکل جا کے پیش ہوئے، لیکن مسئلہ وہی کا وہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ایک سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے، اس پہ جو ہے نا عمل ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اب اس کی توجیہات بیان کی جا سکتی ہیں، اس کی جو ہے نا ایکسپلینیشن بھی دی جا سکتی ہیں کہ جی اس وجہ سے ہم نہیں کر رہے یا اس وجہ سے نہیں کر رہے، لیکن اس وقت جو نا صورتحال یہ ہے، جو فیکچوئل صورتحال ہے، میں اس کی میرٹس میں بھی شاید نہ جانا چاہوں، لیکن فیکچوئل صورتحال یہ ہے کہ جی اس وقت سپریم کورٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ جی اس فیصلے پہ عمل نہ کر کے وزیر اعظم صاحب نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا، اب کاروائیوں کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے۔ پہلے جو نا فیصلے کی امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی تھی، لیکن اب کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے۔ اب ان کو باقاعدہ ایک چارج شیٹ دی گئی ہے کہ جی آپ یہ ایکسپلین کریں گے جی آپ اس فیصلے پر عمل نہ کرتے ہوئے آپ نے ولفلی جان بوجھ کے آپ نے کورٹ کا کنٹمپٹ کیا ہے اور جو ہے نا آپ نے فیصلے پہ عمل نہیں کیا۔ اب یہ چارج ہے ان کے اوپر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا اس چارج سے وہ اپنے آپ کو ڈسچارج کروانا چاہتے ہیں یا یہ کہ جی وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور جس طرح بہت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر دوستوں کا خیال ہے کہ جی وہ پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور وہ جو ہے نا آگے چل کے جو ہے نا وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ کس قسم کی جو ہے نا صورتحال آگے جا کے پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر یقیناً ایک اگر یہ کنٹمپٹ جاری رہتا ہے تو پھر یہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ یقین سے شاید یہ بات کہی جا سکتی ہوگی کہ جی آئندہ آنے والے دنوں میں یقیناً پھر وزیر اعظم صاحب کے خلاف کوئی کاروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ایک طرف ہے ایک سیاسی فیصلہ اور ایک طرف ہے ایک عدالتی فیصلہ، اب فیصلے کی میرٹ میں جائے بغیر جو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو بنیادی طور پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی آیا وہ اپنے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کرا کے گھر بھیجنا چاہتی ہے یا یہ کہ جی جو ہے نا اس فیصلے پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ اگر امپلیمنٹیشن روکنی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی قانونی استدلال دینا پڑے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ سمجھتی ہے کہ جس صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے تو میری نظر میں وہ کورٹ کے سامنے پلی لینی چاہیے۔ میں اور آپ اگر بیٹھ کے اس پروگرامز کے اندر یہ پلی لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک چودھری رضا صاحب جو انتہائی قابل وکیل ہیں اور انتہائی جو ہے نا بڑا نام ہے پاکستان کی لیگل جو ہے نا تاریخ کا، میں سمجھتا ہوں کہ، اور انہوں نے بڑے بڑے کیسز بھی لیے ہیں، لیکن یہ آرگیومنٹ جو استثناء والی ہے جو آرٹیکل 248(2) کی ہے جب تک یہ عدالت میں نہیں لی جائے گی تب تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا فائدہ, یہ دلیل یہاں پہ اگر ہم ڈسکس کریں گے بیٹھ کے ٹی وی چینلز پہ اور ریڈیو پروگرامز میں, تو شاید اس کا اتنا زیادہ وزن نہ ہو. وزن تبھی ہوگا اس چیز کا اور عدلیہ تبھی فیصلہ اس پہ کر سکے گی اگر یہ چیز جو ہے نا عدالت کے اندر اٹھائی جاتی ہے.
صدر عباسی صاحب, آپ وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے اس بیان سے کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ صدر کے خلاف جو کیسز ہیں اس کے پیچھے سیاسی عزائم محرک کار فرمائیں؟
دیکھیے, یہ کیسز یقیناً جو ہے نا 97 کے اندر جب بنے تو اس کو وقت جو ہے نا ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک جو ایک کرٹیسزم ہوا اس زمانے میں جب صدر رحمان صاحب نے یہ کیسز بنائے, تو اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ ان کے خلاف کرٹیسزم بھی ہوا اور جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے جس انداز میں اس وقت جو ہے نا وہ مینیپولیٹ کیا اس وقت کے ججز کو, وہ جو ہے نا کیس اپنی جگہ یقیناً جو ہے نا ایک اختلافی نوعیت کا تھا جس کے اندر جو ہے نا بڑی کنٹروورسیز تھی اس کی, اور اس کے بعد جب وہ سزائیں ہوئیں محترمہ میر عظیر بھٹو صاحبہ کو بھی اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی, تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں کیس کیا تو سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس جو سزائیں تھیں سزاؤں کو ختم کیا گیا اور واپس جو ہے نا اس کو ریمانڈ کیا گیا نچلی کی عدلیہ کی طرف, اور اس دوران جو ہے چونکہ پروسیڈنگز سوئٹزرلینڈ کے اندر اسٹارٹ ہو چکی تھی تو اس میں جو ہے نا تفریق میری نظر میں یہ کرنا بہت ضروری ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے نا تقریباً 5 پیشیاں انہوں نے جنیوا میں جنیوا گئیں اور انہوں نے وہاں کے جو انویسٹیگیٹنگ مجسٹریٹ تھا اس کے سامنے پیش ہوئیں, اور میری نظر میں اگر ایک دو پیشیاں اور ان کو موقع ملتا اور خدا تعالیٰ ان کی زندگی بڑھاتا آگے, تو ایک دو پیشیاں اگر اور ہوتی تو اس کے اندر یقیناً جو ہے نا وہ اپنا نام کلیئر کرانے کی پوزیشن میں آ چکی تھیں. باقی رہا سوال رضائی صاحب کا, تو معذرت کے ساتھ وہ چونکہ پیش نہیں ہوئے انویسٹیگیٹنگ مجسٹریٹ کے آگے, تو وہ معاملات جو ہے نا وہیں کے وہیں رہے, اور پھر جب این آر او آیا اور این آر او کے نتیجے میں ان مقدمات کو جو ہے نا ختم کیا گیا, اور پھر جب این آر او انلیگل ڈکلیئر ہوا تو پھر یہ کنٹروورسی اب, یا کنٹروورسی میں نہیں کہوں گا, یہ ہیڈ آن کولیشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے عدلیہ اور وقت کی حکومت کے درمیان یہ آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یقیناً جو ہے نا اس کیسز کے اندر کانٹروورسیز تھیں, لیکن آج جب وہ این آر او جب آیا اور اس کے نتیجے میں پہلے یہ کیسز ختم ہوئے اور وہ جو سول پارٹی پروسیڈنگز میں جو حکومت پاکستان کا کردار تھا اس کو جب ختم کیا گیا, تو اب جو میری نظر میں جو معاملات اس حد تک آ گئے ہیں کہ جی جب تک میرٹ کے اوپر ان کیسز کو نہیں لڑا جائے گا, میں سمجھتا ہوں گا آنے والے دنوں میں شاید جو ہے نا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لیے جو ہے نا یہ بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہو جائے گا. جی
جو اپوزیشن جماعتیں بار بار یہ مطالبہ کر رہی ہیں کیس عدالت میں ہونے کے باوجود کہ فوری طور پر خط لکھا جائے, تو کیا ان کا مطالبہ آپ کے خیال میں صحیح ہے؟
میں ذاتی طور پہ جی فرینکلی جو ہے نا میں اس چیز کا وہ رہا ہوں کہ جی یہ خط لکھ دینا چاہیے تھا, اور اگر توجہ اس طرح ہے کہ جی کیسز ختم ہو چکے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں سے یہ جواب آ جائے کہ جی کیسز ختم ہو چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر پوزیشن تھی. اب جو نا خط لکھنے اور نہ لکھنے میں تفریق یہ پیدا ہو گئی ہے کہ خط لکھا جاتا ہے تو ایک کیس ہوگا جس کو میرٹ پہ جا کے لڑا جائے گا, وہ کسی وقت بھی آگے بھی چل کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میرٹ پہ ہی لڑا جائے گا, تو اب خط لکھنے میں یہ کباہت ہے اور خط نہ لکھنے میں یہ کباہت ہے کہ جی ملک کا وزیر اعظم جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا عہدے کی قربانی دینے کے لیے آگے جا رہا ہے. اب ان دونوں کے درمیان یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر ہے کہ جی وہ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. رضوی صاحب, اگر جیسا کہ ابھی صدر عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کیس ختم ہو گیا تو خط لکھ دینے میں کیا کباہت تھی جبکہ عدالت کا حکم بھی تھا؟
بات یہ ہے کہ جناب صفدر عباسی صاحب بہت محترم ہیں اور انہوں نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے سارے واقعات پر. بات میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی حلقہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پر مقدمہ کو دوبارہ کھولنا چاہتا ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ اگر محترمہ کو تھوڑا سا وقت اور ملتا تو محترمہ کلیئر ہو جاتی. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کو انہیں جنیما میں پیش کیوں نہیں کیا؟ کون سی طاقت تھی جنہوں نے نہیں پیش کیا؟ سیف الرحمان نے مقدمات بنائے, 3 سال وہ رہے, 3 سال وہ رہے, اس کے بعد دوسری گورنمنٹ آ گئی مشرف کی, جنرل مشرف کی. جنرل مشرف کے دور میں بھی انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. جنیما جانے کے لیے جنیما کا کسی نے ایگزٹ نہیں دیا, انہیں ڈرتے تھے کہ آصف علی زرداری کہیں ملک سے باہر نہ رہ جائے. آصف علی زرداری کو قصدن نہیں پیش ہونے دیا گیا وہاں پر.
और अल्टीमेटली उसी वक्त की गवर्नमेंट ने उन्हें खत लिखा कि हम इस केस से विड्रॉ करते हैं, इस केस को ख़त्म करते हैं। तो अगर उस अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सिस्टम चलता है, मैं इस बात से ठीक कहते हैं जनाब सफदर आबाद साहब से मुतफिक हूँ कि केस को मेरिट पर लड़ना चाहिए। और इस बात से भी मैं दिली तौर पर मुतमिन हूँ कि एतजाज़ अहसन जैसी शख्सियत जो जाहिर है वो बगैर मेरिट के मुकदमा नहीं लड़ेंगे, और मैं ये यकीन रखता हूँ कि खत न लिखा जाए तो बेहतर है, इसलिए कि ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अपने मुल्क की आला तरीन हस्ती को इस तरह अदालतों में घसीटा जाए, और कोई भी मुल्क नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों ख्वाहिश है लोगों की, और ख़ासकर एक मखसूस सियासी सर्कल की, कि वो अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही मुल्क के सरबराह के खिलाफ दूसरी अदालतों में धकेलना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की सुबकी हो। अगर पाकिस्तान इस्तेसला, जैसे एतराज़ हसन साहब कहते हैं कि जब सदर पाकिस्तान नहीं रहेंगे केस खोल देंगे, भाई अगर आपको इस मामले में थोड़ा बेसब्री का मुजाहरा ना करें, कुछ सारी जिंदगी के कॉन्ट्रैक्ट किसी का नहीं है। जब तक उनका इकतदार है, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बकौल हमारी किताब के कि वत इज्जुमन तचाओ वत दुल्लमन तचाओ भैया कल खैर इन्नल्लाह वाला कुल्ले शैन कदीर, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत एक शख्स को इज्जत दे रहा है और एक शख्स सदर पाकिस्तान है, तो आप भी आप अपने मुल्क के सरबराह की इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया में कौन किसी की इज्जत करेगा। और मेरी इतला के मुताबिक वियना कन्वेंशन के मुताबिक स्विट्जरलैंड की अदालतें वियना कन्वेंशन के तहत काम करती हैं, इसलिए कि वो किसी गैर मुल्क सरबराह के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ती। जब दोनों जानब से इस्तिस्ना हासिल है, पाकिस्तान का आइन भी इस्तिस्ना देता है और वियना कन्वेंशन भी इस्तिस्ना देता है, तो इस पर जिद किस बात की, मेरी बात समय में नहीं आई। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अदालतों में बेहतर तरीके से पेश किया जाएगा, और हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से बड़े अच्छी वकला है, माहिरीन कानून है, दुनिया तस्लीम करती है पाकिस्तान के। अभी पिछले दिनों जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित ने कहा, ये कल ही उन्होंने टेलीविजन पर कमेंट करते हुए कहा कि ये आर्डिनेंस जो है तौहीन अदालत का, ये मुतनाज़े है। और एक सीनियर वकील की, एक सीनियर वकील की जब ये बात मंजर आम पर आया कि वो कह रहे हैं कि ये मुतनाज़े है, फिर उसके बाद भी नहीं समझ में आती बात कि भाई ये जिद क्यों।
जी इस समय फिर आज उनका आपके संदर्भ में
मैं ये कहना चाहता हूँ
जी
कि अभी डॉक्टर बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा कि इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, इसमें इसे आराम से तहम्मुल से सुना जाए, और ये कोई छोटे मोटे ये कोई चलती फिरती बात नहीं है, ये मुल्क के वजीर आजम की का ऑफिस है, मुल्क के कहते हाई ऑफिस का बात है, अदलिया भी एक हाई ऑफिस है, इसे इनकार हम नहीं करते, हमने कभी भी इनकार नहीं किया। और मेरा ख्याल है कि 1973 का आइन बनाते वक्त जितना एहतराम अदलिया का जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मर्डर केस में भी अदलिया पर सुप्रीम कोर्ट में, मैं गवाह हूँ इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट में जब पेश हुए जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो उन्होंने कहा कि मुझे अदालत पर पूरा एतमाद है, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश थी कि हम आपको सुनते। आप मेरी समझ में नहीं आती बात ये।
बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, मैं फिर हाजिर हूँगा, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत।
परेशानी है इन लोगों को
जी, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में रिजवी साहब। इस वक्त चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद है जनाब कैसर इमाम साहब। कैसर इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसर इमाम साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
फाइन
जी, माफ कीजिएगा कैसर इमाम साहब, मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपसे दोबारा रابطہ हो। आपकी तस्वीर तो मैं देख रहा हूं टेलीविजन पर, लेकिन आवाज बजाय आप तक नहीं पहुंच पा रही है। सेनेटर सफदर अब्बासी साहब, तो क्या अब यह समझा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद हल्कों की तरफ से जो ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन सितंबर तक हो जाएंगे, तो अब आइंदा साल ही होंगे?
देखिए जी, ये तो अब इस वक्त जो ना कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कि अब ऑपोजिशन की जमातें जो है ना, क्योंकि कुछ कॉम्प्रोमाइजेज जो है ना नजर आ रहे हैं, खासतौर पे 20वीं तरमीम के हवाले से, जिसके अंदर जो है ना गालबन जो केयर टेकर का मसला था उसमें जो ना कोई कोई सेटलमेंट होती नजर आ रही है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की, तो क्या अंदरून खाना कोई कोई इलेक्शन के हवाले से भी बात हुई है, कोई डेट को आगे पीछे करने के हवाले से बात हुई है? मैं तो उसका परवीन नहीं हूं, लेकिन ये कि जो इस वक्त कराइन ऐसे लग रहे हैं कि जी अगर ये मामला जो है ना जल्दी सेटल नहीं होते, खासतौर पर ये जो वजीर आजम साहब का मुकदमा है, अगर ये तूल खींचता है तो फिर हो सकता है कि हम अर्ली इलेक्शन भी देखें, और गालबन अक्टूबर नवंबर की डेट जो है ना वो डिस्कस की जा रही है मुख्तलिफ हलकों के अंदर और मुख्तलिफ सियासी हलकों के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में गालबन जो है ना ये क्या केस नहायत ही अहमियत का हामिल है, और इस केस के जो भी नतज निकलते हैं मेरी नजर में उसी हवाले से फिर आगे चल के इलेक्शन के हवाले से भी बात होती हुई नजर आएगी। लेकिन सामने ये नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट इलेक्शन के हवाले से, केयरटेकर सेटअप के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के हवाले से नजर आ रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान।
जी अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब को किसी वजह से मुस्ताफी होना पड़ा तो क्या जो नया वजीर आजम मुंतखब होगा, जैसा कि इत्तेहादी जमातों ने कहा है कि इस सूरत में अगर नया वजीर आजम मुंतखब करने की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही होगा, तो क्या अदालत फिर उस वजीर आजम को भी कह सकेगी या कहेगी कि आप खत लिखें स्विस अदालतों को?
देखिए वो तो अदालती फैसला है, और वो अदालती फैसला 17 मेंबर बेंच ने पहले दिया, और फिर 17 मेंबर बेंच ने ही उसके रिव्यू को जो ना रिव्यू पे भी फैसला दे चुकी है, तो वो तो अब फाइनलिटी अटेन कर चुकी है। वो 12 सुप्रीम कोर्ट की जितने भी बेंचेज हैं, चाहे वो पहले 7 रुकनी 5 रुकनी बेंच था, चाहे फिर वो 7 रुकनी बेंच था, चाहे फिर वो 8 रुकनी बेंच था, हर बेंच ने इस बात की जो है ना दोबारा तजवीज की है कि जी वो केस फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अब उस फाइनलिटी अटेन करने के बाद हम उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो ना फैसला वही हो, जिस तरह मैं चीज को देख रहा हूं, अगर आप चाहे सदर साहब इस्तिस्ना क्लेम करें या ना करें, मेरी नजर में अल्टीमेटली ये जितने भी केसेस हैं वो मेरिट पे ही डील होंगे और स्विट्जरलैंड के अंदर ही डील होंगे, और अगर उस चीज को लंबा खींचने की कोशिश की गई तो फिर ये एक तलवार है जो लटकती रहेगी, वो जिस वक्त भी फिर जिसके ऊपर गिरे, मैं इस वक्त सरदस्त नहीं कह सकता कि किस पे गिरेगी, लेकिन मेरी नजर में जो है ना एक मौका मिला था इन चीजों को हुकूमत के दौरान जो है इन चीजों को बेहतर पैराए में ले जाके उसको खत्म करने का, गालबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत से वो मौका जाया हो चुका है, और मैं ये समझता हूं कि अब आज आप लें या कल लें, लेकिन अल्टीमेटली इन केसेस को डिसीजन इनकी मेरिट पे ही होगी, और मैं ये समझता हूं कि जितना जल्दी जो ना इस फैसले को जो ना मेरिट पर कराया जाए उतना बेहतर होगा, जितना इसको लंबा खींचा जाएगा तो उसके जो मुजमरात हैं पाकिस्तान के सियासी सिस्टम के ऊपर और जो हमारे मोहतरम कायदीन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर वो ज्यादा रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय कि हम इसको लंबा खींचें, जितना जल्दी से जल्दी मुमकिन हो उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेहतरी होगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले दिनों में कम से कम इस चीज से मुबर्रा हो जाएगी जो एक तलवार लटक रही है बहुत लंबे अरसे से हमारे पे।
जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सेनेटर सफदर बासी साहब कि क्या इस सूरत हाल में कि अगर हुकूमत ने खत ना लिखा, वजीर आजम ने खत ना लिखा, तो कोई सूरत हाल ऐसी भी हो सकती है कि पार्लियामेंट ही तहलील हो जाए या पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी?
देखिए जी वो तो वजीर आजम साहब का खत लिखना या न लिखना वो तो एक इंडिविजुअल बात हो गई ना कि जी उन्होंने एक फैसला करना है, और वो फैसला दो फैसले हो सकते हैं, एक ये कि जी अदालती जो हुक्म है उसको माना जाए, और एक ये है कि जो पार्टी का फैसला है उसके सामने सरे तस्लीम खम किया जाए। तो अब तो वो चीज वजीर आजम साहब की अपनी अपने जाती हवाले से जो वो ले रहे हैं डिसीजन वो एक अलग है, और पार्लियामेंट जो है वो अपनी जगह कायम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी पार्लियामेंट की डिसोल्यूशन तो तभी मुमकिन है कि जी एक वजीर आजम अपनी मेजोरिटी गंवा बैठे और फिर दूसरा कोई वजीर आजम इलेक्ट ना हो सके। मैं समझता हूं कि अगर कोई इस किस्म की बात होनी है, बहरहाल ये मफरूजा ही है कि कल को क्या होने जा रहा है, लेकिन अगर ये बात होनी है तो फिर पार्लियामान के अपने ऊपर है कि जी क्या वो किसी वजीर आजम को मेजोरिटी से इलेक्ट करती है या नहीं करती। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ आज इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन आने वाले दिनों में ही ये पता लगेगा कि मामला जो ना वो किस तरफ जा रहे हैं। वो इस वक्त रिजल्ट मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं ये कह सकूं जी कि पार्लियामान क्या करती है आगे चल के।
जी अबरार रिजवी साहब आप क्या कहते हैं, सेनेटर सफदर बासी साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी हुकूमत ने बेहतरीन मौका गंवा दिया, जाया कर दिया, वो इस केस को निपटा सकती थी लेकिन नहीं किया उसने ऐसा।
नहीं देखें, मैं सफदर अब्बासी साहब बहुत
फरमाइए, आवाज आ रही है।
अब्बासी साहब बहुत काबिले एहतराम है। मैं ये समझता हूँ कि कल ऐसा भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान पार्लियामान ही कहते हैं एक रेजोल्यूशन ले आए और इस इस्तिस्ना की फेवर में ये कहे कि वो हम इसको दोबारा इसको तकबीयत देते हैं। पार्लियामान टूटने की बात की जाती है, पार्लियामान तो नहीं टूटती, दूसरा वजीर आजम आ सकता है और दूसरा वजीर आजम आकर कहते हैं एतमाद का वोट ले सकता है और वही पार्लियामान कहते हैं इंडोर्स कर सकती है इस इस्तिस्ना के फैसले को कि ये जो इस्तिस्ना है आइनी तौर पर ये जायज है। और इसी हवाले से और मैं देखिए ये बड़ा लंबा चलेगा, अभी इतनी जल्दी से इसे जल्दी से समेटने का मतलब ये है, आप मैं ये भी समझ रहे हैं, ये सफदरबासी साहब भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि इस मुल्क की मईशत को कितना नुकसान पहुँच रहा है इन 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 खबरों से, इस मुल्क के अवाम को कितनी तकलीफ पहुँच रही है, कितना हिजान पैदा किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि इस सारे सिस्टम को डिरेल किया जाए, तो डिरेल नहीं होने दिया जाएगा इंशाल्लाह अजीज, कहते हैं इसके दलाइल भी दिए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि अदालत अलिया को कायल किया जाए कि ये कसदन नहीं है, ये कानूनी तौर पे किया गया है और कानून इस बात की इजाजत देता था कि खत न लिखी जाए लिखा जाए। और अदालत का फैसला काबिल एहतराम, अदालत के फैसले को हम मानते हैं, जब अदालत के फैसले को जब हम मानते हैं तो अदालत का एहतराम करते हैं, तो हम उसके साथ साथ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपनी अदालत के हिदायात और मशवरों को भी मानते हैं कि वो हमें मशवरा दिया जाता है कि ये खतना लिखा जाए, इसलिए कि पाकिस्तान का आइन जो है वो इसका इस्तिस्ना देता है सदर पाकिस्तान को। जब सदर पाकिस्तान को ये इस्तिस्ना हासिल है तो फिर इस पर मेरी नहीं समझ में आती, मैं भी एक शहरी हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, थोड़ा बहुत समझता भी हूँ और एक तवील अच्छे से सियासी अमल से गुजर रहा हूँ, मैंने भी बड़े मसाले, लेकिन कुछ मखसूस मैंने, भाई डॉक्टर साहब ने उसका जिक्र नहीं किया लेकिन मैं इस बात का जिक्र जरूर करूँगा कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये बस ये जल्दी से जल्दी ये सारा काम हो जाए, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि कल का वक्त पता नहीं क्या बताएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी उनके पास भी माहरीन है कानून के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास बेपनाह माहरीन है, असफंजार बली साहब हैं हमारे साथ, ANP है उसके पास कानूनी माहरीन है, हमारे साथ MQM है उसके पास कानूनी माहरीन है, हमारे पास और दीगर साथी हैं जो इस अमूर में उनका साथ दे रहे हैं और वो पूरे मुत्तफिक हैं कि सदर पाकिस्तान के वो इस्तिस्ना हासिल है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है, मैं कैसे समझ लूँ और आवाम कैसे समझ लें कि सिर्फ कहते हैं वज़ीर आज़म के खत लिखने से ही सारा कुछ होगा। इस केस को अपने मुल्क में बैठकर इसके फॉर्म तफहीम से डायलॉग से या अदलिया समझती है तो अदलिया को महाले के हमारे बुकला कायल करने की कोशिश करेंगे और ये गेम हमने हारी कोई नहीं है, कहीं हमने बाजी नहीं हार दी, कहीं हमने मौका नहीं गवा दिया, मौका किस बात का गवा दिया, हम तो हमेशा जद्दोजहद में रहे हैं, हम हुकूमत में हो तब भी जद्दोजहद में रहते हैं, हम हुकूमत से बाहर हो तब भी जद्दोजहद में रहते हैं, हमें कब ये चार साल पूरा का पूरा आपके सामने है, किस वक्त किसी ने कोई हमें काम करने का मौका दिया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से भी आई है, दो बार सैलाब आया है, 20-25 लाख IDPs जो सबात और मालाकन के थे वो आए उनको वापस भेजा, ये इम्तहान आते रहते हैं, ये मौके आते रहते हैं, ये मौका भी आ जाए अल्लामिया खैर खैरियत से गुजारेगा और हमारे बुकला और मुझे यकीन है कि जनाब एतराज़ हसन और उनके साथी कामयाब होंगे, इसलिए कि वो बहुत खलूस दिल से
जी,
क्योंकि एतराज़ हसन साहब चाहते तो कहते कि मैं मुकदमा नहीं लड़ता, लेकिन वो समझते हैं कि वो अदालत को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे, इसीलिए वो बड़े तहमुल से बड़े सुकून के साथ इस मुकदमे को लड़ रहे हैं और जैसे दीगर वकला ने कहा है कि इसको तहमुल से सुना जाए, इसे आसान ना बनाया जाए, इसके नतायज बहुत बुरे होंगे। इस वजीर आजम का चला जाना बाजार तो बड़ा आसान सा लग रहा है, बड़ा सादा सा लग रहा है कि वजीर आजम चला जाएगा फर्द जुर्माइज होने के बाद, नहीं साहब ये वजीर आजम नहीं जाया करता होता, तारीख में वो घाव पड़ जाता होता है जो कभी भरा नहीं जाता, फिर
जी रिजवी साहब बहुत शुक्रिया आपका,
सियासी नफरतों की बुनियाद
बहुत शुक्रिया। सफदर बाजी साहब आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं?
जी जनाब।
आखिरी सवाल, एक डेढ़ दो मिनट का वक्त बचा है। अपोजिशन का मतालबा है कि सदर जरदारी की मौजूदगी या उनकी निगरानी में इलेक्शन नहीं हो सकते, और अभी दफा पाकिस्तान काउंसिल का जो इजलास हुआ था उसमें भी ऐसे ही कुछ मफहूम का इजहार किया गया था, तो क्या ये मुमकिन है कि वो सदर न रहे और फिर इलेक्शन हो?
देखिए, वो तो जब तक सदर हैं तब तक तो जिना मैं समझता हूँ कि जो भी इतराज करता है वो मेरा इतराज नाजायज नहीं लगता। जब तक वो सदर पाकिस्तान हैं तो यकीनन जो है ना, को केटेगरी गवर्नमेंट जो भी बनेगी वो उन्हीं को वही सदर बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब ये जो बीसवीं तरमीम आज मैं सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि अभी इसको क्या असेंबली के अंदर पोजिशन है, लेकिन वो जो एग्रीमेंट सामने नजर आ रही है, अगर तमाम जमातों का एग्रीमेंट हो गया है तो फिर यकीनन जो है ना, ये जो केटेगर गवर्नमेंट जो बनेगी, जो वजीर आजम इंटरिम बनेगा, वो काफी उसमें ऑपोजिशन का और दीगर जमातों का उसके अंदर काफी से होगी, इलेक्शन कमीशन के बनने में काफी से होगी। तो मैं समझता हूँ एक दफा अगर ये चीज हो जाती है तो फिर इस बात में इतराज करना कि जी वो सदर होंगे तो हम इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ ये जरा एक नामनासिब की बात है। अब जब इतनी कंसेशन अगर गवर्नमेंट दे रही है तो मैं समझता हूँ कि फिर ऑपोजिशन को उस चीज को जना उसी अंदाज में देखना चाहिए, और जना मैं समझता हूँ कि वो और यानी इन अवामिल को इस चीज़ में तलाश करना कि जी वो सदर हैं तो इलेक्शन हम कबूल नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ वो एक नामनासिब की बात।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर सफदर अब्बासी साहब और जनाब अबरार अली रिजवी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हम आप दोनों के शुक्रगुजार हैं। और नाज़रीन, आपने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के ख्यालात सुने और मुलाहज़ा किए, इसके लिए हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल पाकिस्तान की जो सियासी सूरतहाल है, जैसा कि रिजवी साहब कह रहे थे कि अभी कुछ दिन ये मामला तुल खींचेगा, और सफदर अब्बासी साहब कह रहे थे कि बहुत जल्द मुमकिन है ये फैसला हो जाए, तो आने वाला दिन ही बताएगा कि जल्दी ये फैसला होता है या देर में फैसला होता है, और मौजूदा जो सियासी सूरतहाल है उसका रुख क्या होता है, और ये ऊँट सियासत का मौजूदा जो है वो किस करवट बैठता है, इसके लिए बहरहाल हमें आपको सबको इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बासी भी और दीगर साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।